शुद्ध भक्ति योग है,
किंतु अभी
रस युक्त अभी नहीं है। और सर्वगुह्यतम में रस युक्त वहाँ पर भक्ति की चरम अवधि मनमना भव इत्यादि, मनमना भव श्लोक में अंतिम भी है, गुह्य गुह्यता मन सभी कुछ, और एक तरह से तारतम्य भी है, वो करूँ नहीं तो ये करूँ नहीं ये करूँ। इस तथ्य को तुम लोग अपना लेना, यदि गीता के संबंध में कहीं कुछ बोलना पड़े इसमें भी दो चार समझ करके यदि बोल दे तो बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग बृहद भगवतान करते हैं। करते हैं अर्चन और उनकी मूर्ति में और भगवान में भेद मानते हैं और कहते हैं कि इसमें प्रभु जी का अधिष्ठान है तो काट है तो पत्थर है तो मणि मुक्ता स्वामी का मूर्ति, ये किस चीज की मूर्ति है? सोने की। अरे सोने की है ना, राधा कृष्ण की मूर्ति है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, सोने की मूर्ति नहीं है राधा कृष्ण। तो ऐसा ज्ञान जिनको नहीं होता इस रूप में पूजा करते हैं तो उसकी पूजा को भगवान ग्रहण नहीं करते। दूसरी बात, वैष्णवों की निंदा करते हैं, उनके चरणों में अपराध अवज्ञा करते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं तो भगवान ऐसे लोगों की पूजा को ग्रहण नहीं करते। शरीर में आत्मबुद्धि है, जल में तीर्थ बुद्धि है, किंतु वैष्णव के चरणोदक में और उनके महाप्रसाद जो महा महाप्रसाद हो जाता है उसमें भगवत बुद्धि नहीं है और वैष्णव में जात बुद्धि है, गुरु में भी जाति बुद्धि है,
नर बुद्धि
मनुष्य बुद्धि है, ये हमारे गुरु जी मनुष्य हैं, ऐसे लोग नारकी हैं। अच्छे शिलाते सामान्य बुद्धि नारकी सब। तो जो लोग ऐसा रखते हैं उन लोगों के लिए जो सीधा में मान लें कि अभी हम लोग किसी बात के लिए झगड़ने लगे और ठाकुर जी की मूर्ति वहाँ है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे वो सीधा है पक्का, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई झगड़ने लगा या कोई प्रणाम किया तो उसको आशीर्वाद देने लगा तो इसका मतलब क्या हुआ? और क्या हुई? गुरु जी के सामने किसी को आशीर्वाद देना, उसको सांत्वना देना या उसको शासन कर मैं तुम्हें देख लूंगा और गुरु जी के सामने, तो इसका मतलब है गुरु जी को वो मनुष्य आधार मनुष्य मानता है, इसका उसके चरणों में अपराध है। इसलिए गुरु जी के सामने न तो किसी को सम्मान दे, न तिरस्कार करे, न कुछ करे, उस समय गुरु जी के ऊपर लिखो। ऐसे ही ठाकुर जी यदि सामने हैं कुछ भी हो रहा है तो हम लोग यदि इनको भगवान मानते हैं तो क्या चाहिए? किसी पर हम शासन करेंगे, किसी को गाली देंगे, किसी को कुछ करेंगे? नहीं, वो सब प्रभु तक को देना चाहिए, जो प्रभु मालिक हैं वो सब कुछ करने वाले हैं, हम लोग चुपचाप ही आ रहे हैं, नहीं तो अवज्ञा मुक्ति हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति अर्चन करता है तो वो अर्चन उसका बेकार है। उसी तरह से ठाकुर जी का चरणामृत है, वैष्णव का चरणामृत है, ठाकुर जी का चरणामृत है और वैष्णव का चरणामृत क्या है? हाँ, महाचरणामृत है। ठाकुर जी का प्रसाद महाप्रसाद है। और यदि सचमुच में उनका कोई प्यारा भक्त हो सचमुच में, तो वो महाप्रसाद है। जिसको ऐसी बुद्धि नहीं है, अरे ये वैष्णव है ठीक है, किंतु ये कायस्थ जाति के हैं या शूद्र जाति के, ये वैष्णव भक्त उच्च कुल के नहीं, ब्राह्मण नहीं। हमारे गुरु जी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण भी बहुत ऊंचे ब्राह्मण हैं, कुलीन ब्राह्मण है, भट्टाचार्य सत्ताचार्य हैं। ऐसा यदि कोई समझता हो, और आपके गुरु कैसे हैं? आपके गुरु जी तो बनिया हैं कि क्षत्रिय हैं कि शूद्र हैं? ऐसा बुद्धि यदि गुरु में रखता है तब तो ये नर बुद्धि हो गई, उसकी अवज्ञा और उसकी निंदा करी गुरु। ऐसे लोग यदि अर्चन करते हैं तो वो भस्म में घी खाने के बराबर है। ऐसे सब चीजें बतलाइए। कहते हैं जैसे ये सब तो लिखा है इसलिए अर्चन नहीं करते, कनिष्ठ अधिकारी अर्चन करते हैं। जिनको वैष्णव का सम्मान का ज्ञान नहीं होता है ठाकुर जी को ही ठाकुर जी कहते हैं, होता ऐसा अधिक है। इसलिए शास्त्रों में सावधानी दी गई। इसका मतलब नहीं है कि अर्चन करने वाला अधिकारी ही गड़बड़ का है और अर्चन नहीं करना चाहिए, ये करना नहीं है। अर्चन के बिना कल्याण नहीं होगा, किंतु उसमें जो जो दोष है उसे सावधान किया। इसलिए ये नहीं कर रहे हैं ये तुम अर्चन मत करना, अर्चन करो किंतु इनसे इन चीज़ों को दूर कर। कहते हैं कि ठाकुर जी के अर्चन की तो बात ही क्या, एक चिन्ह को भी यदि भगवत बुद्धि से प्रणाम किया गया है, उनको भगवत बुद्धि से अर्चन किया गया, सम्मान दिया गया, तो वो सम्मान किसका होगा?
भगवान का।
एक कागज है इतना बड़ा, कागज का मूल्य क्या है? कितने बड़े पीस का मूल्य मान लिया कि 4 पैसा हो या 1 पैसा हो, और उसी के ऊपर में अपने हाथ से पेंसिल से ही एक राधा और कृष्ण जी की मूर्ति बना अपने हाथ से ही, और बना करके उसी चित्रपट को ऐसा ही बना दिया, एक भाव आ गया, कृष्ण बंसी लेकर के खड़े हैं, पैरों पर पैर रखे हुए हैं और बाएं तरफ में राधिका, ठीक से बना नहीं किंतु फिर भी वो एक ऊंचे स्थान पर रख करके और उनको साष्टांग प्रणाम किया। 2 पैसे का कागज और उसने थोड़ा सा ऐसा लिख दिया। अब उसको जो प्रणाम करता है ये प्रणाम कहाँ पहुँचेगा, क्यों पहुँचेगा? वो थोड़े कागज भगवान है या वो क्यों पहुँचेगा? बताओ, हो तो गया किंतु वो कागज का टुकड़ा थोड़े भगवान है, तो भगवान कैसे हो गया?
कैसा
वो राधा कृष्ण हो गया पेंसिल का बनाया हुआ?
अब क्या विचार
है? सुनो देखो, इसमें ऐसा समझो भगवान अंतर ज्ञान है, अरे वो तो वहाँ पर एक छवि है, छवि न भी रहती थी,
नाम है,
और वहाँ पर मान लीजिए कहीं कोई जा रहा है, भगवान का ग्रहण नहीं किया, तो प्रभु आपकी हमारे ऊपर में दया है, ऐसा कर करके साष्टांग प्रणाम कर रहा है। देखता जो कोई देख तो नहीं है, कोई नहीं देख रहा, और वहाँ पर प्रणाम किया था प्रभु आप हमारे ऊपर में, तो वो प्रणाम भगवान क्या नहीं पहुँचेगा? और जहाँ पर कि वो विग्रह भी है मूर्ति बना दिया, ठाकुर जी देखते हैं कि कागज के ऊपर में हमारी छवि अंकित कर रही है और प्रणाम तो मुझे करना है, हमको कृष्ण समझ करके ये प्रणाम कर, वहीं से भाव को भावग्राही जनार्दन ग्रहण करके और उसको उसका पूजा जो भगवान साक्षात रूप में जो पूजा करने का फल है वो
उसमें।
इसलिए एक तीर्ण को भी भगवान का संबंध जान करके, जैसे मोर पंख देखा और मोर पंख को साक्षात एकदम दंडवत प्रणाम किया और उसको उठाया सिर पर रखा, यहाँ रखा, किस लिए रखा? मोर पंख के हिसाब से नहीं रखता, वो कृष्ण का इतना प्यारा ये चीज ये मट्टी पर कौन डाल दिया है, बस कृष्ण की लीला की स्मृति हो गई और उसको इस पास यहाँ रखता है, हृदय में रखता है, कहाँ रखूँ उसको, कोई चीज नहीं मिलती जी कहाँ रखू, भगवान चक उसके भाव को कदम कर क्योंकि सर्वम पर जानी है, बस उसकी पूजा विग्रह पूजा का तात्पर्य ये है। और उत्तम महापुरुष यदि एक मोर पंख को देख करके भगवान की लीलाओं की पुण्य स्मृति आ जाती है, तो राधा कृष्ण को देख करके महाप्रभु को देख करके उनकी स्मृति नहीं आई, उनको साक्षात राधा कृष्ण समझ करके, जो राधा कृष्ण नहीं समझ पाते उन लोगों के लिए भस्म में घी डालना है, जो राधा कृष्ण की मूर्ति होने पर कितना सुंदर बंसी बजा रहे हैं, राधा की बात में पड़ी है, देख लिए हुए हैं, भंगी खड़े हैं, कैसे भंगी से देख रहे हैं, और कभी भगवान का भाव नहीं आए, उन लोगों को ठीक कहा। इसलिए वहाँ पर मूर्ति पूजा की निंदा यहाँ नहीं है, बल्कि उन भावों की निंदा है जिसको लेकर के वो करते हैं किंतु भस्म में घी डालना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान की पूजा की तो बात क्या, एक चिंकी को भी भगवत भाव से यदि पूजा की जाए तो वो सब उसकी जितने भी मनोरथ है वो पूर्ण हो जाते हैं। विशेष करके वैष्णव लोग जिस चीज को देखने से भगवत स्मृति आ जाती है उसको भी प्रणाम करते हैं। संतों को किस लिए प्रणाम करते हैं, यहाँ के देख ले ऐसे कृष्ण वैष्णव प्रधान कौन है, जिसके देखने से ही कृष्ण की स्मृति हृदय में अपने आप आ जाती है और कृष्ण नाम अपने आप आने लगता है। एक होता है मान लिया कोई कृष्ण नाम कहने से जानबूझ करके चिढ़ता है ना, तो उसको देखते ही कृष्ण कृष्ण कहने लगे और चिढ़ने लग गया, ऐ मत करो उठे तो लवार का नाम मत लो, तो वहाँ पर वो आभास हुआ चिढ़ाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। जहाँ सचमुच में कृष्ण का भाव आ जाए, जैसे मोर पंख को देख करके भक्तों को अपने आप भाव आ जाता है, ऐसे वैष्णव को देखने से कृष्ण का भाव अपने आप आ जाता है, वो दर्शा और उत्तम महापुरुष भाव रखते हैं। तो कथा के जिनके देखने से जिनसे विग्रहों को देखने से भगवत भाव उपस्थित हो जाता है, स्मृति आ जाती है, भला ऐसे विग्रह का पूजन करना कभी निकृष्ट कार्य हो सकता है, ये कभी नहीं, भस्म में घी डालने के समान कभी नहीं हो सकता। हाँ एक बात जरूरी है, यदि वो सकाम उपासना है, बहुत से लोग ऐसे पूजा करते हैं सकाम भाव वाले, जो निष्काम भाव वाले और प्रेम वाले भक्त लोग नहीं कर सकते, क्या कहा मैंने, बहुत सारा ऐसा अवसर होता है जो सकाम भक्त वाले उसका पुत्र मर रहा है रोग से ना, अब मरने वाला है, अब वो ठाकुर जी के दरवाजे के सामने जा सकते हैं, रोते हुए गदगद होकर के प्रभु हमारे बच्चे के, और अंतर हृदय से वो बोलता है और ठाकुर जी उसको बचा देते हैं ना? बचा देते हैं। जिसको प्रेम की आकांक्षा है वो ठाकुर जी के सामने खड़ा होकर के ऐसे कहेगा साधक को उसको आंख में आंख नहीं आएगा और हम नहीं आएगा, इसीलिए नारद जी ने कहा वो कोई भय से कोई द्वेष से
कामना जैसा भय आत्मा है,
कोई स्नेह से और कोई भक्ति से हमारी उपासना करता है, किंतु जो शत्रु भाव से करता है वो जल्दी तन्मय हो जाता है ना? और भक्ति भाव से तन्मय होने वाला बहुत देर बहुत विलंब लगेगा, किंतु शत्रु भाव से एक साझे में तन्मय हो जाता है। किंतु इसलिए ये नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम शत्रु भाव से उनमें तन्मय हो, वो कह रहे हैं जब शत्रु भाव में तन्मय होने से ही इनका ऐसा हो जाता है तो भक्ति भाव से होने से नहीं जाने क्या हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं। अरे गोपियां तो काम से हो गई, यदि काम से कोई भगवान के प्रति ऐसा भाव हो भाई प्रेम से यदि कोई करे तो फिर नहीं जाने क्या हो जाए,
इससे बढ़कर क्या होगा, काम से जाए प्रेम से।
कह रहे हैं साधारण लोग लेना, साधारण आदमी नहीं समझता कि प्रेम क्या चीज है, काम से वो सब कुछ प्रेम काम के रूप में या प्रेम ही को एक स्त्री से काम काम भाव को प्रेम कहते हैं, निष्कपट रूप से ये प्रेम कर रहा है। कहाँ निष्कपट आता है, प्रेम है ही नहीं, एकदम विशुद्ध काम वो है, मोह काम भी नहीं मोह है। इसलिए कह रहे हैं कि कोई यदि भगवान का किसी भी प्रकार से सकाम भाव से भी पूजा और अर्चन करता है तो उसकी हानि कुछ होगी, एक हानि केवल होगी विलंब हो जाएगा उसको असल प्रेम लाने में, इसलिए विलंब होगा। वो जो सकाम भाव से प्रभु के लिए जो प्रार्थना की थी प्रभु उसको वो चीज देंगे और उसको भोगाएंगे। ध्रुव को भोगने में 36,000 वर्ष लग गया और 36,000 दिख गया, 36,000 वर्ष के बाद में तब उनको वैकुंठ मिला। वो भी वैकुंठ कहाँ मिला, ब्रह्मांड के अंतर्गत में, और रस भरा प्रेम भरा कोई वैसे चीज नहीं मिली। जरूर कुछ उसमें भी सुख है, शांति तो है ही है, निर्विघ्नता है, कोई दुख कालेश नहीं है, किंतु अयोध्या में और ब्रज में जो प्रेम का भाव है वो तो नहीं है। इसलिए सकाम भाव वाले को कोई हानि तो नहीं है किंतु लाभ भी उतना है, बहुत समय लग जाएगा और अपनी कामनाओं को पूरा करने के बाद में तब उसको उससे बहुत कोटि कोटि जन्म भी जा सकता है। इसलिए ऐसे कामों में मत लगाओ। तो अर्चन का फल कभी भी जिस किसी भी रूप से तुम करो, कामना से करो अथवा मान लो कि किसी वैष्णव के की निंदा करते हुए या अपमान कर दिया, अवज्ञा कर दिया, तभी भगवान का अर्चन छोड़ो नहीं रहा, लगा ही रहा तो क्या होगा। यदि छोड़ा नहीं लगा ही रहा और बीच बीच में अवज्ञा किया तो कभी ना कभी कोई साधु जरूर आएगा दर्शन के लिए, तो आएगा और देखेगा तो उसको दया लग जाएगी और उसको बड़े प्रेम से उसका बन करके उसको समझाएगा, उसका विरोधी होकर समझाने से नहीं समझेगा, इसलिए वो उसका बन जाएगा, उसकी बड़ी प्रशंसा कर देगा, वाह तो बड़ी ठाकुर जी की सुंदर रूप से सेवा करता है। एक बात है, यदि कोई वैष्णव आए ना तो ठाकुर जी का प्रसाद देना और उसका सम्मान करना और सब बातें कहेगा समझा देगा बस उसका चित्त, क्यों, अरे वैष्णव की जो निंदा किया है, जिस वैष्णव की निंदा किया है वो बड़ा कभी प्रसन्न हो सकता है। ये जो कोई चिंता करता है ये अपने मन के भावना के अनुसार में करता है, वैष्णव ऐसा नहीं होता, वैष्णव किसी का अपराध ही नहीं लेता। जैसे हरिदास ठाकुर जी को 22,000 में मारे जाने पर भी अपराध नहीं लिया, फिर नकसकू ने इतना प्रहलाद महाराज जी को सताया तो भी नहीं लिया, मीराबाई के उसके पति और घर वालों ने उसे क्या नहीं किया, 20 तक दिया, कभी अपराध माना, कभी भगवान से प्रार्थना कीजिए प्रभु इनको जरा दंड देना, ये कभी नहीं, तो फिर वैष्णव ही नहीं है वो। तो इसलिए कोई सी वैष्णव के प्रति उन्होंने अवज्ञा की तो उसको उपेक्षा कर देगा कुछ दिन के लिए, किंतु उसका कल्याण काम ही करेगा वो रहेगा, जैसे इसका कल्याण उपेक्षा कर दिया, उसे बातचीत नहीं किया, उसका दिया वो नहीं गया कुछ नहीं, किंतु उसके लिए वो प्रार्थना करता है जैसे इसका भी कल्याण हो, इसलिए उसकी प्रार्थना से भगवान उसकी प्रार्थना सुन करके कहते कि ये उसके लिए प्रार्थना करता है, वाह ये तो बड़ा दयालु है, बस प्रभु जी रिस जाते
हैं
एक मान लिया कि हमसे किसी ने झगड़ा किया और झगड़ा करके आज खाया नहीं, तो हमने देखा कि भाई उसका मित्र परेशानंद जी उससे थोड़ा सा उसका मेल है, मैंने परेशानंद को बुलाया कहा जैसे भाई उसको जा करके देखो जी खाया कि नहीं, तुम्हारा मित्र है, कहा जैसे तुम नहीं खाएगा तो महाराज जी भी नहीं खाएगा और तुम्हारे लिए बड़े दुखी हैं, इसलिए तुम जिससे उसका मेल है उससे उठा दो। तो हम लोगों का मेल किससे है? उसे बढ़ता थे तो प्रभु से और किसी से मेल है नहीं। तो वैष्णव लोग जो ऐसे होते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करते जिसका मंगल, क्योंकि तो संबंध में आ गया ना, जिस प्रकार से भी हो अवज्ञा किया तो अभी नहीं के संबंध में आया, इसलिए तब कहीं कहीं ऐसा होता है जो वैष्णव तो क्षमा कर दिया किंतु उनकी चरणों की जो धूलि है वो क्षमा नहीं करती, उसको कुछ दंड भोगाती है, जैसे कुष्ठ व्याधि का हो जाना, अद्भुत रोग का हो जाना और किसी प्रकार का दंड, जैसे गोपाल चपाल का हुआ या और लोगों का है, गोपाल चक्रवर्ती का हुआ, हरदास ठाकुर का निंदक का हुआ या और सब जगह देखा जाता है ऐसा हो जाता है। भगवान के चरण धूलि सही ये तो प्रार्थना कर देते हैं, यदि साधारण हुआ तब तो उसकी क्षमा कर देते हैं और थोड़े से भोगा करके और फिर उसको रास्ते पर लगा देते हैं, और यदि अपराध नहीं हुआ वैसा कठोर थोड़ी सी अवज्ञा की या गुरु को लघुत को देख करके विचार करके उस पर भगवान की कृपा होती है और उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, रिपेंडेंस करता है, प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, उसका शुद्ध होता है। अधिकांश ऐसा ही होता है, जैसे देखो दोष किया जमलाजुन ने, नल कुबर मणिगृह नारद जी के तौर पर, भागवत में लिखा नहीं है ये क्या अपराध किया, गाली दिया होगा, ये बदमाश कहाँ से आ गया, साले चपाटे जैसे जो सब गालियाँ ये भी दिया होगा, नर्दक जैसे गाली देते हैं ना, उनको होश रहता है, तो वो तो बदहोश थे, मदिरा पान किए हुए थे और उनमें सबसे बड़ा भारी बाधा इन्होंने दिया, तो कह दिया ये लुचाला फंदा कहाँ से आ गया, ये नंग धड़ंग बदमाश रंग में भंग कर दिया, मुझे गाली दिया होगा जरूर, और अवज्ञा की अंत संत पता। नारद जी ने सुना कभी तो कहा जिसको कांटा कभी गड़ा नहीं उसको दूसरे का दुख कैसे मालूम, ऐसा जड़ हो गया तनिक भी ज्ञान नहीं, अरे कुबेर का पुत्र होकर के जो शिव जी के अत्यंत परम भक्त हैं और मैं भी तुम्हारे बाप के यहाँ जाया करता हूँ, तुम हमें भी बात जानते हो खूब अच्छी तरह से और तुमने ऐसी बात की ठीक, प्रीति गर्भ में उसको शासन किया, अपने लड़के को हम कभी मारते हैं तो किस लिए मारते हैं, विद्वेष भावना से मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं ऐसे जो लंगड़ा अंधा हो जाए आँख फोड़ देंगे, तो उसी तरह से शासन किया है और शासन करके उसको अनुभूति का चांस दिया है कि तुम 10,000 वर्ष 20,000 वर्ष तक तो पेड़ बने रहो और तुमको उसकी अनुभूति होगी तब तुम समझेगा, सचमुच में ऐसा ही किंतु चूंकि नारद जी का भी संपात था और नारद जी ने उसको अभी संपात दिया है तो नारद जी की दया लग गई, हमने मारा किसी को, किसी को मार दिया मैंने किंतु तुरंत दया आ जाएगी उसको, बस इसको मार दिया इसको, ये नहीं कि आज मैंने बड़ी बहादुरी की इनको मार करके दुरुस्त करके खूब अच्छा कर, बस में कुछ नहीं ऐसा सोच सकता, मार करके उसको मैं बड़ा कष्ट होता है, क्यों कोई बात कह दिया तो उसे ऐसा होता, इसने सोचा कि जब दंड दिया तो इसको कुछ देना भी तो चाहिए जैसे प्रसन्न हो जाए, बच्चे को मार करके मैया लोला हाथ में दे देती है या खाने के लिए रो रहा है ना तो हाथ में लड्डू देते, वो सिसकता हुआ रोता हुआ करता हुआ धीरे धीरे चुप होकर के लड्डू मिलेगा, धीरे धीरे उसको ऐसे ऐसे थपथपा देगी जो भी मिले उसे बेटा 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 कर करके मार तो दिया, और फिर जिस चीज़ के लिए वो जिद कर रहा था जिस चीज़ को देना नहीं चाहती थी फिर वो चीज़ जिदे जीती, ऐसे ही इनको दंड दिया, दंड देकर के किंतु क्या दिया, अमूल्य भक्ति रत्न दिया, प्रेमा भक्ति बैठ ब्रज की भक्ति, ऐसे साधुओं का वही यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि वो वैष्णव की निंदा भी करता है और क्या भी करता है, वैष्णव की परम प्रेम किसी का अपराध ग्रहण नहीं करता, शारीरिक रूप से कुछ उसको दंड भले ही दे दें किंतु उसका उपकार जरूर करेंगे कुछ दिनों के बाद में, किंतु भक्तों में एक चीज है उसकी निंदा क्यों कर रहे हैं? निंदा इसलिए कर रहे हैं भक्तों को भगवान का के साथ में क्रीड़ा करना और भगवान के साथ में खेलना दुलना, भगवान की सेवा करना, इसमें कोई विलंब होता है तो वो सह नहीं सकते। तुरंत भगवान का दर्शन करना है, प्रभु मुझे दर्शन, भगवान का आलिंगन करना चाहते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी के लिए भी कहा, श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए श्याम बालक को देखा, पेड़ों की झुरमुट में खड़ा हुआ और त्रिभंग भाव से बहुत बंसी बजा रहा है और महाप्रभु जी के प्रति आंखों से मानो निकट बुला रहा है, ऐसे ऐसे महाप्रभु आगे बढ़ रहे हैं और वो पीछे खिसक रहा है, जब दौड़े तो वो अंतर्ध्यान हो गए, महाप्रभु पीला बिना किस लिए कर रहे हैं, पाया नहीं इसलिए ना तुरंत पाना है, एक सेकंड की देरी उनसे सज्ज नहीं होती है, एक मिनट की देरी हो जाए उनकी सेवा नहीं होती है, इसलिए कहते हैं कि ये बड़ा दुर्भागा है, पूजा जिस ढंग से ये कर रहा है इसके तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे वहां तक सेवा करने, हाँ है इसका जन्म व्यर्थ किंतु उसकी पूजा व्यर्थ नहीं होती, किसी सकाम भाव से करे, निष्काम भाव से करे, प्रेम से करे, विशेष प्रेम से करें, जगह का फल जरूर होगा, जरूर फल, इसीलिए वो पूजा का फल तो है, किंतु उसमें जो विलंब हो रहा है इस विलंब को वो सहन नहीं कर सकते, इसलिए शास्त्र में उतने नहीं जाए, ये जहाँ जहाँ दोष है अर्चन में उस दोषों को दूर कर दे, कृति के साथ में प्रणाम कर दे, सेवा एक आदमी किसी विग्रह की सेवा कर रहा है ना? और एक आदमी रघुनाथ और रूप की भांति भावनामयी सेवा कर रहा है और भावनामयी सेवा करके अधीर हो रहा है, अर्चन में उतनी अधीरता जल्दी नहीं होगी, और विशेष करके देखू ऐसा कोई भाव अर्चन में स्थूल वस्तुओं का संग्रह करके सब पूजा करना पड़ता है, कोई ना कोई त्रुटि अवश्य भावी है, चाहे मानसिक हो और चाहे स्थूल, कहाँ का वो कुर्सी है, भोग में जो दिया गया कहाँ से आया है? वो चीज शुद्ध है कि नहीं है, मन पवित्र है कि नहीं है, ये सब तो अर्चन में विचार होता है, इसलिए उसमें ये सब विचार है उसमें, और नाम हरि नाम में जाए देखो तारक नहीं खाईते सुईते जटा बखा नाम है, खाने के समय सोते चलते फिरते बुटते बैठते किसी की रूप भगवान का नाम महाफलदायक, इन सब कारणों से कहीं कहीं शास्त्रों ने ऐसा रखा है। फिर कहते हैं इसके कहते हैं कि बहुत अर्चन का फल कभी भी कुछ नहीं हो सकता, किंतु फिर भी देहात्म बुद्धि जाती है, हम लोग इतना चाहते हैं सुनते हैं तो अभी कुछ कह देना अभी क्रोध हो जाए, कह दे किसी काले व्यक्ति को भी जिसको सौंदर्य नहीं तुम सुंदर नहीं हो, उसका मन कैसा हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो ऐसे ही देहात्म बुद्धि, हम न काले हैं न गोरे हैं, काला गोरा है न काले हैं न गोरे हैं, न नाके हैं न लंबे हैं, हैं बड़े सुंदर अंतर किंतु इस देह में आप ध्यान, इसको छोड़ करके मूर्ति पूजा करनी चाहिए, इसको छोड़ करके नाम भी करना चाहिए, देहात्म बुद्धि एक अपराध है ना, किंतु होता है मुंह को हरिनाम में या किसी भक्ति के साधन में क्यों देरी होता है विलंब होता है, वैष्णव निंदा छोड़ सकते हैं, गुरु की आज्ञा भी छोड़ सकते हैं, कृष्ण नाम के बराबर शंकर का नाम नहीं है ये भी हम सम्मान लेंगे, किंतु वो छोड़ना देहात्म बुद्धि छोड़ना ये बड़ा फर्क, किंतु जो छोड़ देगा वही महाजन, इसलिए अर्चन का फल कुछ नहीं है, किसी किसी रूप में फलदायक, किसी न किसी रूप में जरूर फलदायक, किंतु ऐसे भावों को लेकर के करने से केवल विलंब होता है। तो उनका कल्याण कैसा होता है, हमने अभी कहा वैष्णव लोग गुणग्राही होते हैं, गुणग्राही न रहे ना तो वैष्णव ही नहीं। इतने आदमी बैठे हैं, किसी न किसी रूप में किसी को दोष है। यदि गुरु जी ये देखने लगे कि कंबल का यह लोम जो है, ये लोम निकल रहा है थोड़ा, उसको निकाल दे, तो निकालते निकालते क्या होगा, कंबल, अरे लोम तो सही तो कंबल बना है, तो सब निकालते निकालते रहेगा क्या। इसलिए वैष्णव लोग यदि किसी हम लोगों का दोष देखने लग जाए, गनई से दोष सुन नहीं पाओ, जब आप विचार करेंगे देखेंगे सचमुच हमारे अंदर में कोई गुण नहीं है, दोष ही दोष है। जो गुण जैसा दिखता है वो भी दोष ही है हम लोगों का, जैसा गुण जैसा ना, जैसे हमने किसी की प्रशंसा की तो अंतर से हमने प्रशंसा की है न कि हमने ठट्ठा विद्रूप किया है न क्या किया है, ये कौन जाए। महाभागवत ही किसी की निंदा नहीं कर सकता यदि महाभागवत हुआ तब, और वही प्रशंसा कर सकता है किसी की। साधारण लोगों के लिए किसी की प्रशंसा करना है, और वे बिना दुखी नीच होना, करोड़ों सही सुनना, मानी मानद होना, ये बड़ा भारी कठिन है। तो कहते हैं कि वैष्णव लोग बड़े गुणग्राही होते हैं, वो साधारण लोगों के दोषों को तरफ नहीं देखते हैं, इसके तरफ देखते हैं केवल गुण की तरफ। एक आदमी में हजार दोष है, ठाकुर घर में ही रसोई घर में गया और बड़े सुंदर स्वादिष्ट रूप से कुछ बना, सुंदर तो रसोई बनाता है, उसके साथ साथ में और दो चार गुणों की प्रशंसा करें। यदि नहीं होता ना तो हम लोग के गुरु वर्ग इतने लोगों को लेकर के जो भजन करते हैं, दो भाई एक माता पिता के एक साथ में नहीं रहता, रहते हैं एक माता से एक पिता से उत्पन्न होने पर भी एक साथ नहीं रह पाते। और कहां इतने लोगों को विभिन्न विभिन्न रुचि, एकदम तीन और छह का संबंध लेकर के, अब कब कैसी मति होती है, और उन सब लोगों को लेकर के रखना है, ये साधारण बात है, बहुत बड़ा बात है। यदि वैष्णव लोग गुणग्राही नहीं होते तो इतने लोगों को नहीं रख सकते, इतना कितना बड़ा हमारे मन की बातों को भी जान करके उनके तरफ में देखते ही नहीं है, इसके दोषों को विचार ही नहीं करते, वो विचार करते हैं कि इसमें क्या क्या गुण है, और उस गुणों को ठाकुर जी की सेवा में लगा देना चाहते हैं, और ऐसा ही करते हैं, जिसका जैसा गुण है उसको ठाकुर की सेवा, नहीं अच्छा था प्रसाद पाओ। देखते हैं कि भाई जब बाहर में जाते हैं तो दसवा चालीन कराना चाहिए, कल हम लोग गए तो वहाँ पर कितने आदमी बाहरी लोग थे, नगण्य थे, और हम लोग गए और जा करके कीर्तन किया, एकदम जम गया खोप, और सभी लोग मिल करके कीर्तन किया, और कह रहे थे जो आए वो रमन टावर के मालिक थे, जो कार में हमको ले आए, कह रहे थे भाई आप लोग ने तरंग दर्शा दिया एकदम एकदम सभा को, एकदम कैसे आप लोगों ने बदल दिया, कीर्तन के माध्यम से पहले ही हो गए, आसमान में अपने से कितने आदमी गए, सब लोगों ने कीर्तन किया तभी तो ऐसा हुआ। वैष्णव लोग जो है गुणग्राही है, देखा जैसे यदि कहीं जाना तो अंततः तो हम संख्या में तो बढ़ाई देगा। हमारे गुरु जी थे, एक अर्ध विक्षिप्त लड़का आया, अर्ध विक्षिप्त समझते हैं ना, अर्ध पागला, अर्ध पागला, लंबा सा, धोती पहनने का भी सहूर नहीं, सहूर नहीं मैंने समझते खसक रही, कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है पता नहीं। तो गुरु जी के पास में जाकर के चरण में लेट गया, अरे कहाँ से आया, तो मेदिनी कहाँ कराने वाला, किस गांव का, तो गांव का नाम बदलना है, अरे कैसे चलाया घर छोड़ कर, तो कह दिया जब भजन कर ठीक मत में रहो, नरसिंह महाराज को जानते हो ना, सत्ता से मारा गई थी कुछ देर के बाद में आए, चार पांच दिनों के बाद आए। इसको किस लिए रख दिया? ये तो टट्टी करने के बाद में हाथ फिराने भी नहीं जानता और कोई काम नहीं कर सकता, खाला भी नहीं मार सकता, झाड़ू भी नहीं ये दे सकता, बैठा रहता है चुपचाप, प्रसाद खा लेता है बैठ जाता है। इसको किस लिए आपने रख लिया? गुरु जी ने कहा हमारे यहाँ पर बैगन लगाए गए हैं बगीचे में थोड़ा सा जगह और फूल लगाए, ये बंदरों का बड़ा उपद्रव है यहाँ, बंदर आते हैं झट तोड़ ले जाते, तो उसको बैठा देंगे वहाँ, तो अंततः तो बंदर देखेंगे एक आदमी बैठा हुआ है वो नहीं है, इतना तो लाभ होगा। और हम लोग का जो कुछ बच जाता है वही खा लेता है, रहने दिए, जब तक ये रहता है तब तक इसके कान में भगवान का नाम पड़ेगा और कुछ न कुछ जरूर करेगा, चुपचाप बैठ नहीं सकता, कुछ न कुछ करेगा, पागल होने पर भी कुछ न कुछ वो करेगा, पागल कम तो करेगा ही, लेकिन लड़कियाँ लेकर के तो चलेगा तो बंदर देकर के भगेंगे। नरसिंह मन कहे आपको प्रणाम है, कैसे गुणग्राही होते हैं। और ऐसी बात नहीं होती तो हमारे गुरु जी और सब जितने वन महाराज हैं, माधव महाराज हैं, बहुत से मठ बना लिया और लाखों रुपया एकत्र कर लिया तब मठ छोड़ा, बहुत से मठ बना लिए, बहुत से शिष्य हो गए और काफी रुपये जम गए, दो चार दस लाख रुपये, तब मठ को छोड़ा, कोई बैकग्राउंड अपना बना लिया। और हमारे गुरु जी क्या किया? एक पैसा भी कभी जीवन में नहीं रखा अपने पास, सब समाज अकिंचन करने लगे, मठ को जब छोड़ना हुआ किसी कारण से बाध्य होकर के खाली हाथ आए और उनके साथ में पचासों आदमी सब चल गए। गुरु जी ने कहा अब ये समस्या हो, इनको तो साथ कहाँ से आए, तो चिंता कर रहे थे, पैर पर पैर रख करके ऐसे ऐसे पैर बुलाते थे गंभीर, बस चिड़िया ने ऊपर से एक पोटली फेंक दी तो झन बजा, तो पोटली उनके हाथ के पास में आई तो खुल कर देखा जो सात आना कि छ आना पैसा, ऐसा होता था ना पहले तांबे का पैसा, बड़े प्रसन्न हुए और एक वैष्णव आ गए थे उनको सम्मान करना था, वो संदेश का छेने का संदेश का देते और बड़े मिठाई और स्वादिष्ट पीता थे, तो उससे छ आने में उस समय में छ संदेश मिल गया और उनसे उनकी भरपूर सेवा की और इतने में प्रभु जी ने एक जगह से एक सौ रुपये का मनी ऑर्डर दिया। ऐसे गुणग्राही इसलिए उन लोगों ने रखा और ऐसी मठ की स्थापना की और जिसमें हम लोगों जैसे लोग कहाँ कहाँ से आ सके और भगवान का भजन कर रहे हैं और तो दूसरों से भी करा रहे हैं कुछ कुछ। वैष्णव लोग गुणग्राही होता है, ग्राही माने ग्रहण करने वाला होता है, उससे दोषों को नहीं लेंगे जो अर्चन कार्य में है और उस पर कृपा करके उसको सुधार करके चित्त सुधार करके और आगे बढ़ा देते हैं, उनका कल्याण। यदि छोड़े नहीं तो अब बीच में यदि छोड़ दिया था तुम्हारा हरिनाम करते समय अपराध भले ही हो जाए किंतु नाम नहीं छोड़े, वैष्णव के प्रति कभी मान लें कि अवज्ञा नहीं हो गई किंतु उस वैष्णव की अवज्ञा होने मान लें कि कभी हो गई, वैष्णव को मत छोड़े, लगा ही रहे। कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे उपलब्धि हो जाएगी, अनुताप होगा और सब कुछ बन जाएगा। उन्होंने कहा भक्त लोग भगवान की सेवा में जो विलंब होता है ये छोड़ ये सहन नहीं कर पा। अभी तुमको चुपका बैठे तुम उधर दबर चलो बैठे चुपका, उनको विलंब सहा नहीं जाता, उनकी सेवा नहीं मिलने पर बड़े दुखी हो जाते। विशेष करके भक्ति राज्य में ऐसी कुछ बातें हैं जिसको प्रकाश के रूप में लिखा जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, और इसीलिए शास्त्रकार ने उसका वर्णन नहीं किया। जब शास्त्रकार लोग ही अनुभवी पुरुषों ने वर्णन नहीं किया तो साधारण लोग भी उसको क्यों कहें। साधारण मने असाधारण जो है भजन परायण जी उत्तम महाभागवत वो लोग ही नहीं कहते। कैसे? एक साधारण सी बात है, कृष्ण का भजन करने से आदमी निर्धन हो जाएगा और उसकी घर में जितनी भी संपत्ति है वो संपत्तियां भी दूर हो जाएंगी। जिस चीज पर उसकी आसक्ति है वो सब कुछ। अब इसको ये बात सत्य है कि झूठ है? परम सत्य है। यदि मान ले कि हम इसको कहें यहाँ पर तो हम समझते हैं कि कोई भी नहीं सुनेगा। दो एक आदमी है, स्त्रियों में दो एक वो सुनेगी और पुरुषों में भी जो बाहर वाले हैं वो सब चले जाएंगे। केवल छठे हुए जो संसार को छोड़ करके आए हैं कोई बात, बाकी सब चले जाएंगे। इसलिए शास्त्र में कहीं कहीं बहुत थोड़े रूप में उन चीज को बतलाया और बतलाया। जैसे उद्धव जैसे व्यक्ति हैं ब्रज में गए और कृष्ण को जो सबसे अधिक प्रेम करते हैं, कृष्ण के लिए देह दैहिक सब जो कुछ छोड़ दिया है, सर्वस्व अपना छोड़ दिया कृष्ण के लिए, तप का भिखारी या भिखारिणी बन गई तो और दिन रात कलपती है कृष्ण के लिए और कृष्ण उन पर दया नहीं कर रहे। ये कोई आदमी देखेगा तो कोई भजन करेगा? उद्धव ने ये अपनी आंखों से साक्षात रूप में देखा। नंद बाबा यशोदा जैसा कौन भगवान का प्रेमी होगा? और वो दिन रात विलाप करते हैं कि हाय हाय कृष्ण का, कृष्ण के लिए विलाप करते हैं। वसुदेव देवकी कुछ दिन ही रोए और ये लोग कितना दिन रोए? जब तक जीवित रहे तब तक रोए। और जो कोई भगवान का भजन नहीं किया बड़े आनंद से सुंदर घर में सुंदर गृहस्थी पुत्र पौत्रों से धन संपत्ति से युक्त होकर के बड़े हार के साथ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनमें जरासंध रावण और ये सब हैं। अरे मारे तो 10-15 दिन की युद्ध में ही तो मरे, या कितने दिन का युद्ध हुआ? थोड़े से एक वर्ष की नहीं, बाकी इतना काल, कितना काल, लाखों वर्ष रावण ने जो भोग भोगा वो किसी के लिए संभव है? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख संगाती इतने और सोने की लंका, देवता लोग उसके घर में ऑर्डर सप्लायर हैं, जरासंध भी ऐसे, दुर्योधन भी कम सुखी नहीं था। तो देखते हैं कि ये लोग तो बड़े सुखी हैं। और नंद बाबा को देखो, घर उजड़ गया है, घर में रसोई नहीं हो रही। नंद बाबा दिन रात रोते हैं कृष्ण कृष्ण का, सोच रहे हैं कृष्ण को मैं भूल जाऊं। अब ये बताओ दुख, ये दुख देख करके कोई कृष्ण का भजन करेगा? और शास्त्रों में इसे ऐसा लिखा जाएगा, बड़ी चालाकी के साथ में लिखा है, इसलिए अनाधिकारी बात इसको जानेगा और जानते हैं, इसलिए दुर्गा की, कंकाली जी की अधिक से अधिक, गणेश जी की, शंकर जी की अधिक से अधिक, लक्ष्मी नारायण जी की सेवा। भागवत के पूरे विद्वान कल दिन के बाद हम लोग यहाँ पर गए, बड़े विद्वान आदमी भागवत, भागवत वक्ता भेज करके उन्होंने अपना घर बनाया, घर जोड़ा, विवाह हुआ, शादी हुआ, उसी भागवत को कह करके है सब कुछ है। किंतु भागवत का जो अंतिम जो ध्येय है क्या? गोपी प्रेम है। गोपी के प्रेम के बदले लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
नारायण
नारायण भी कहते तो कोई बात नहीं, लक्ष्मी नारायण
बद्री नारायण
बद्री नारायण सूर्य नारायण नारायण जानते हैं। जो कृष्ण का भजन करने से हम दरिद्र हो जाएंगे और ऐसी दुर्दशा है, इसलिए भजन नहीं करते, हमारी कठिन। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि तुमको बतलाने में मुझे कुछ संकोच हो रहा है। सबसे अधिक कृष्ण को जो प्रेम करता है सबसे अधिक, वो सबसे अधिक रोता है, और उस रोने को कहते हैं विप्रलम्ब रस। उस रस फस को लोग साधारण आदमी क्या समझेगा, वो तो देखेगा जो रो रहा है किस लिए रो रहा है, रोने में कोई विशेष अमृत रस भरा पड़ा है, ये उसके दिमाग में नहीं आएगा। बड़े बड़े लोगों के दिमाग में नहीं आएगा, बड़े बड़े भक्तों को भी नहीं आएगा जो उस रोने में क्या आनंद है, किस लिए वो कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं। हम लोग को जिस दिन थोड़ी सी आंखों में आंसू भरा है तो सोचते हैं कि आज हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, रोना आने की तो बात नहीं है। अद्भुत सचमुच में तो आंखों में हे प्रभु कृपा करो, और तो कोई अभी आंसू आने का कोई कारण नहीं। यदि कीर्तन करते करते करते, श्लोक पाठ करते 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 अपनी हीनता का अनुभव की गई और आँख से एक आंसू की बूंद जैसे की हाँ गोद लेता है, असंध्या आज कुछ भजन करता है। किंतु बाहरी लोग जो हैं वो भक्त नहीं, कृष्ण के इन दुखों को देख करके वही कह रहा था। राधा जी का प्रेम की महिमा देखा उद्धव जी ने, गोपियों की प्रेम की महिमा देखा, और नंद बाबा यशोदा जी की महिमा देखा। ऐसा प्रेम जगत में नहीं है, किंतु जल्दी से चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए, कहाँ चलना चाहिए। जहाँ पर कृष्ण हरि हैं, मुकुंद जी हैं, कौन मुकुंद, मुकुंद वो मुक्ति ददाति इति मुकुंद, जो दुखों से छुटकारा देते हैं। ये तो दुखों से इनको छुटकारा नहीं दे सके, दिन रात विलाप कर रही हैं और कर रहे हैं। भाई यदि ऐसी दशा हो गई मेरी भी तो न जाने क्या होगा। चलो जल्दी से चले कृष्ण के पास, जहाँ पर उनकी कहीं कृपा से वंचित न हो जाए। अच्छा कृपा से वंचित हो जाना तो गोपियाँ कृपा से वंचित है, जब दिन रात ही रो रही हैं तो कृपा कहाँ है। कृपा तब होती यदि कृष्ण निकट आ जाते, किंतु इस चीज़ की उपलब्धि नहीं है। जब उनके भीतर में कृष्ण का मिलन है और वो भी प्रलम्ब रस जो है संभोग रस से भी कितना ऊंचा है, इसलिए कहते हैं कि इस चीज़ों को मैं अभी वर्णन नहीं करूँगा। किंतु तुम्हारे अंदर में इस चीज़ की बीज है, इसलिए तुमको ये अच्छा नहीं लग रहा, तुम तो रोना चाहता है, तुम तो उनसे मिल करके उनको छाती से लगाना चाहता है, तुम उनका चुंबन चाहता है, तुम उनका जीठा ईठन खाना चाहता है, तुम उनको घोड़े बना करके उन पर चढ़ना चाहता है और खुद घोड़े बन करके कृष्ण को चढ़ाना चाहता है। सत्य भाव से ये सब बातें शास्त्र में नहीं देखी जाती, ये अनुभूति की बात है। इसलिए कहते हैं कि बड़े बड़े लोग इसमें अपने उद्देश्य से भ्रष्ट हो जाते हैं, तो और लोगों की तो बात क्या है। इसलिए तुम्हारा यहाँ पर मन नहीं लगे, हो गया ना, कैसी हो गया, ठीक 5-6 बजे ही बैठ, 1 घंटा से अधिक मत। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं उपसंहार अध्याय का करने जा रहे हैं। राहें भाई जी, वो जो प्रेम है वो साधारण नहीं है, उसको समझना भी साधारण लोगों के लिए नहीं है। तुम असाधारण प्रेम चाह रहे हैं, वो असाधारण प्रेम यहाँ नहीं है, इसलिए तुमको भाई अच्छा नहीं लग रहा, असल बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लक्ष्मी जी नहीं है, यहाँ देख रहा हूँ कि नारायण जी, उनका कोई परिकर नहीं है, इसलिए चुपचाप तुमको बतलाया। अभी और भी थोड़ी सी बातें, इसके बाद में अध्याय समाप्त होगा। तो उस प्रेम की, कौन प्रेम की, ब्रज प्रेम की बातें, कृष्ण संबंधी बातों को बतलाएंगे। ये कितनी दुर्लभ वो चीज़ें हैं, तुम उस दुर्लभ चीज को पाने के लिए, बैकुंठ में संभव कर नहीं, इसलिए तुम्हारा मन नहीं। इसके बाद में वो कल 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 ही दिन है, परसों हमारे गुरु महाराज जी का आविर्भाव तिथि है, प्रकट तिथि, जिसको हम लोग व्यास पूजा करते हैं। 3 दिन का हम लोगों का समारोह गुरु जी के समय से ही होता है। गुरु जी
अपने माखन की चोरी छोड़ सामरे
सुने और सुन करके हृदय को न बतलाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कान को कह देना ये हृदय से जो कुछ सुन रहा है वह हृदय में पहुँचा और उसको आचरण में लाने की हम लोग चेष्टा करें, सब को सुनने का प्रयास। और यदि न भी सुन सके, न भी हृदय में धारण कर सके, वैसा न कर सके, उनका तो लोग उत्पन्न हो जाए, जो ऐसा ही नहीं भविष्य में इस जन्म में दूसरे जन्म में। प्रभुपाद जी ने कहा था कि ये जगत अभाव का है, हमारा शरीर भी अभाव का है, सब कुछ अभाव। इस जगत में हमको क्या कष्ट है अभी और क्या अभाव है, उसको दूर करना ही उद्देश्य नहीं है, जीवन का नहीं होना चाहिए। ये तो रहेगा ही, जितना करोगे उतना ही रहेगा। इस जन्म में अंततः अपना एम और ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, व्हाट विल बी दी एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, दिस वुड बी एसर्टेन्ड इन दिस लाइफ। इस जीवन में हम ये अंततः निश्चित कर लें तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए, ये स्थिर हो। शरीर बहुमूल्य है, इसमें भी आत्मा को मिला है। इस जीवन के अतिरिक्त किसी भी जीवन में हमारा एम और ऑब्जेक्ट, जीवन का उद्देश्य कभी भी निश्चित नहीं हो सकता, बस इसी जन्म में होगा। और वो निश्चित होगा कब? Our aims and objects of this life, when it will be ascertained, when we are within 40. हम लोग की आयु यदि नौजुवक है, अभी किशोर अवस्था है, बचपन है, जहाँ 40 से ऊपर हुआ फिर निश्चय करने की क्षमता नहीं रही, चित्त की वृत्ति किसी न किसी चीज में वो लग जाएगी और वो पक जाएगी, तब टूट जाएगी तो टूट जाएगी, नवेगी नहीं, दूसरी चीज में नहीं जाएगी। जैसे बड़े बड़े पंडितों को देखता है, बड़े बड़े भागवत पढ़ते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, टीकाएँ करते हैं, और लक्ष्मी नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण,
सूर्य नारायण,
इसलिए कि उनकी उम्र अब ढल चुकी है। राधा जी का ऐसा कोई श्लोक श्रीमद्भागवत में नहीं है जिसमें राधा जी का नाम नहीं है, कहते तो हैं किंतु क्रियात्मक रूप में। इसलिए 40 वर्ष के पहले, उससे भी पहले, अभी जो अवस्था आप लोगों की है किशोर अवस्था, वो मल अवस्था है।